नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी को अब मैं बोलूंगी कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। इस प्यार के लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। तो श्रोताओं, आपके इस प्यार को बरकरार रखते हुए एक बार फिर मैं आपकी दोस्त रितु
और मैं सनिधि हाजिर हूँ आपसे आपकी बातें करने के लिए।
साथियों, कंपनियों में महिलाओं के साथ शोषण और भेदभाव की घटनाएं आम हैं। अपने साथ होने वाले इस व्यवहार के प्रति महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती, पर क्या वाकई ऐसा है? यह पूरा सच नहीं है। आज महिलाएं न केवल शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, बल्कि अपने हक के लिए एकजुट भी हो रही हैं। अब आप ही सोचिए कि भला महिलाएं कमजोर कैसे हो सकती हैं? हम घर बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते कि महिलाएं कमजोर है। यह बात समझने के लिए हमें अपने घर और आस पड़ोस में हो रही गतिविधियों पर गौर करने की जरूरत है। इस बात की गहराई को और नजदीक से जानने का मौका मिला जब हम गुजरात और राजस्थान के कामगार महिलाओं से मिले, तो आज हम आपके साथ उनके अनुभव साझा करते हैं।
ऋतु, साझा मंच की टीम पिछले सप्ताह राजस्थान और गुजरात गई थी। वहाँ आपके श्रमिकों से मुलाकात भी हुई होगी, तो हमें यह बताओ कि वहाँ के श्रमिकों की स्थिति और दिल्ली NCR के श्रमिकों के हालातों में क्या फर्क है?
हाँ, जब हम राजस्थान और गुजरात की अलग अलग जगहों पर गए तो वहाँ हमें कई श्रमिक साथी मिले। उन्हें देखकर खुशी भी हुई और कुछ हैरत भी। वहाँ हमें कई चीजें देखने को मिली, खास तौर पर महिला श्रमिकों की स्थिति। वहाँ काम करने वाली महिला श्रमिक दिल्ली NCR में काम कर रही महिला श्रमिकों की तुलना में कोई ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है।
लेकिन वो कैसे ऋतु, हमें पूरी बात बताओ।
मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक अकेला बहुत कुछ कर सकता है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। वहाँ देखने को मिला कि वहाँ की महिलाओं में एकता का भाव है। वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। उनमें संगठन की शक्ति है। मैं तुम्हें उदाहरण बताती हूँ। अहमदाबाद में हम कुछ आदिवासी कामगार महिलाओं से मिले, देखा कि उनमें एक अलग ही जोश है। वे सभी समस्याएं खुद हल करती हैं। उन्हें चुनौतियों से डर नहीं लग रहा। हालांकि वे भी प्रवासी श्रमिक हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। कई महिलाएं तो रेलवे स्टेशन के आसपास की बस्तियों में रह रही हैं। उन महिलाओं को सरकार और बिल्डर ने हटाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने एक साथ मिलकर सरकार के फैसले के खिलाफ संघर्ष किया। वे अपने हक के लिए एक साथ आवाज उठाई। कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया। ये महिलाएं लगातार तैनात हैं किसी भी तरह के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ने के लिए।
अरे वाह, मैंने बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल होता है, पर तुमने तो एकता की शक्ति को देखा है। अब ये बताओ कि क्या वहाँ उन्हें रहने से कोई रोक पाया होगा?
हाँ, उन महिलाओं ने आज जाने कितने ही परिवारों की जिंदगी बचाई। उनकी कोशिश का ही तो नतीजा है कि वे उसी जगह इज्जत के साथ गुजर बसर कर रही हैं।
इन महिलाओं से हमें सीखने की जरूरत है।
इतना ही नहीं, हम जब अहमदाबाद पहुँचे तो देखा वहाँ निर्माण साइटों पर महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए खास तौर पर पालना घर बनाए गए हैं। इन पालना घर को बनाने से एक किस्म की सामुदायिक भावना का निर्माण हुआ है। महिला श्रमिक अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देती हैं ताकि ज्यादा काम कर सकें।
लेकिन ऋतु, इसका दूसरा पहलू भी तो है। पालना घर में बच्चे को रखकर काम करने का मतलब है कि महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे तो महिलाएं बच्चे होने के तत्काल बाद ही काम पर वापस आ जाएंगी और घर चलाने के लिए पैसे कमाएंगे। फिर चाहे इसके लिए उन्हें छोटे बच्चों को पालना घर में ही क्यों न रखना पड़े।
तुम सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा। पहले महिलाएं कम से कम बच्चा होने के बाद कुछ महीने तक आराम करती थीं, लेकिन आज उन्हें जल्दी काम पर लगवाने के लिए पालना घर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। जबकि नियम तो यह कहता है कि पालना घर में 6 माह से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता, यानी महिलाएं प्रसव के बाद कम से कम 6 माह तक घर पर आराम करें और फिर बच्चे को लेकर काम पर लौटे। जी हाँ श्रोताओं, आपने सही समझा। साझा मंच की टीम ने जहाँ एक तरफ महिलाओं में आत्मबल देखा, वहीं दूसरी ओर ये भी पाया कि कुछ महिला श्रमिक भरण पोषण के लिए अपने सेहत को दांव पर लगाए हुए हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं में एकता के साथ साथ और क्या क्या करने की जरूरत है। साथ ही यदि आपने इससे पहले कभी कंपनी या फैक्ट्री में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है तो हमें जरूर बताएं। नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।